اللہ کا ہاتھ سٹریچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ معاف کرنے کے لیے. حل من مستغفرن, ہے کوئی جو معافی طلب کرے؟ ہے کوئی جو چاہے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ جس نے دن میں گناہ کیا ہوتا ہے, اللہ اپنا ہاتھ سٹریچ کرتا ہے رات میں, لیتوب مسن نہار, جس نے غلطی کی تھی دن کے اندر, ویبسط یداہ, اور اللہ اپنا ہاتھ بلند کرتا ہے بن نہار, دن میں بھی, لیتوب مسل لیل, تاکہ اس کو معاف کر دے جس نے رات میں گناہ کیا تھا. اگر رات میں اللہ سے غافل رہتے ہیں, اگر رات میں تہجد نہیں پڑی جاتی, اگر رات میں رب کے حضور کھڑے ہونے کے لیے ٹانگیں ساتھ نہیں دیتی ہیں, تو دن میں تو اللہ کی نافرمانی نہ کریں, دن میں تو اللہ کو نہ بھول جائیں, دن میں اللہ کو یاد رکھیں. اللہ توفیق انشاءاللہ رات میں بھی دے دے گا. اور یاد رکھیں, میری استغفار کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. میرے استغفار کرنے سے اللہ کی ڈگنیٹی میں ایک انچ بھی اضافہ نہیں ہوتا, ایک پرسنٹ بھی اضافہ نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث قدسی بتائی, اللہ فرماتا ہے, مفہوم آتا ہے کہ اگر پہلے سے لے کر آخری انسان تک تمام انسان اکٹھے ہو جائیں اور تمام جن اکٹھے ہو جائیں, اور وہ مجھے بہترین دل کے ساتھ یعنی خلوص کے ساتھ میری عبادت کریں, تو یہ میری عظمت میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے. اللہ کی عظمت میں آپ اور میری, آپ کی اور میری عبادت اضافہ نہیں کرتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے, میں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. آپ نے فرمایا کہ میں آسمان کی کریکنگ ساؤنڈ, سکویکنگ ساؤنڈ سن رہا ہوں. جب کسی چیز پر بہت پریشر ڈالتے ہیں تو اس میں سے کریکنگ ساؤنڈ آتی ہے نا آواز, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ مجھے آسمان سے ایسی کریکنگ ساؤنڈ آ رہی ہے, جیسے کریک ہو رہی ہوتی ہے کوئی چیز تو اس میں سے آواز آ رہی ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول نے جب یہ کہا, اس کا مطلب تھا کہ جیسے آسمان پر بہت ویٹ ڈالا جا رہا ہے, پریشر ڈالا جا رہا ہے, اور یہ آواز مجھے اور آپ کو نہیں آتی, اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا تھا میں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ یہ آسمان کریک کیوں کرتا ہے, یہ آواز کیوں آتی ہے آسمان کے اندر سے. آپ نے فرمایا, واللہ اللہ کی قسم, آسمان پر چار انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ جو ہے وہ اللہ کے حضور سجدے میں نہ ہو. اللہ کی عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے, اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح اور عبادت کرتی ہے, لیکن ان کی تسبیح کو تم نہیں سمجھتے. ہر کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے, ہم تسبیح کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اگر زبان ہماری راضی بھی ہو جاتی ہے تو اپنے حال سے ہم تسبیح کرنے کو تیار نہیں ہوتے. تو بتا دیا, اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اللہ کو میری اس چیز کی, استغفار کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو یہاں سمجھنے کی کوشش کی ہے, اللہ ہم اپنے گناہوں میں آگے نہ بڑھنے والے ہوں, ہم اپنے گناہوں کو یہیں بریک لگائیں اور اللہ ہم اپنی اصلاح کرنے والے بن جائیں. اللہ ہم آپ سے اس دن دنیا کی حقیقت کو جان کر اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں. یاد رکھیں, اللہ کو میری اور آپ کی عبادت کی ضرورت تو نہیں ہے, نہ میری اور آپ کی عبادت اللہ کی گریٹنس میں اضافہ کرتی ہے, لیکن اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرنے کے لیے اس کی طرف پلٹتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی, ایک شخص صحرا میں جا رہا تھا, مسافر تھا, اس کا سارا پروویژن اس کے اونٹ پر رکھا ہوا تھا, اس کا کھانا پینا, اس کے کپڑے, اس کا پانی, اور اونٹ اس کی ٹرانسپورٹیشن تھی, اس کی سواری تھی. جب وہ سفر بہت لمبا کر کے تھوڑا تھک گیا تو آرام کرنے کے لیے وہ لیٹ گیا اور پاس ہی اس نے اپنے اونٹ کو باندھ دیا. جب آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ اونٹ غائب ہے. اب جو اونٹ غائب ہے تو صرف اونٹ نہیں غائب, صرف سواری غائب نہیں ہے, اس صحرا میں رہنے کے لیے اس کے پاس نہ پانی ہے, نہ کھانا ہے, نہ کپڑا ہے. اب اس شخص کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بتاتے ہیں, جس کا مفہوم آتا ہے, کچھ دیر بعد وہ شخص دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اپنے پروویژن کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے. تو یہ انسان کس قدر خوش ہوگا ہم اندازہ کر سکتے ہیں, اس لیے کہ اس کو زندگی مل گئی دوبارہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ بندے کی توبہ سن کر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ کو محبوب ہیں وہ بندے جو استغفار کر کے اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں, سورہ کہف کے اس خطبے کے اندر, دنیا کی حقیقت کھول دی اور بتا دیا کہ دیکھو دنیا میں ڈسٹریکشنز ہیں, دنیا کی ڈسٹریکشنز تم کو تکبر کا شکار کریں گی, اور اگر تم تکبر کا شکار ہو گئے تو اللہ نے قیامت کے گلمپس دکھا دیے ہیں, قیامت کا انجام بتا دیا ہے کہ تمہارا قیامت میں یہ انجام ہوگا. ہاں, جو اللہ کی رحمت کی طرف پلٹ آئے گا, جو معافی مانگے گا, اللہ اس کو اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے گا. تو ایسنس کیا ہے؟ اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو سے سوری ٹو اللہ. آج معافی مانگ لیں, آج غلطیوں پر اللہ سے جو ہے وہ دل کی ندامت کے ساتھ جو ہے اعتراف کریں کہ اللہ غلطی ہوئی ہے, और जिस जो भी गलती हुई है उसको दूर करने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल काहफ का यहाँ पर पांचवा हिस्सा जो है ये मुकम्मल हो गया। अब छठा हिस्सा हम इसका शुरू करेंगे और छठा हिस्सा इसका एक कहानी है। अभी तक जो आपने पढ़ा था, पहला खुतबा था, दूसरा कहानी था, तीसरा खुतबा था, चौथा कहानी था, फिर पांचवा खुतबा था। अब छठा और सातवां हिस्सा इसका जो आएगा, ये दो कहानियाँ एक साथ आएंगी, एक मूसा और खदर की और दूसरी ज़ुल्कुरनैन की। तो ये छठा हिस्सा शुरू हो रहा है और मूसा और खदर की कहानी इसमें आ रही है। यहूद और कुरैश जो थे, इन्होंने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए थे तो इन्होंने जिन दो कहानियों का सवाल किया था वो पहली और आखिरी कहानी थी, असाबे कहफ वाली और ज़ुल्कुरनैन वाली। ये जो दो कहानियाँ हमें मिलेंगी मिलती हैं, इनका जिक्र उन्होंने नहीं किया था, एक बाग वाली और एक ये जो अब आ रही है मूसा अलैहिस्सलाम वाली। तो ये दो कहानियाँ, इनका ताल्लुक मुफस्सरीन ने दोनों कहानियों का, एक का जोड़ा है कुरैश से और एक का जोड़ा है अहले किताब यानी ज्यूस से, इसलिए कि कुरैश के लोग रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान इसलिए नहीं ला रहे थे, हालांकि कुरान से अमेज्ड हो रहे थे, हालांकि रसूलल्लाह के किरदार को जानते थे, लेकिन क्योंकि तकब्बुर का शिकार थे, अपने आप को आला समझते थे और बार बार उनकी ज़ुबानों से ये बात निकलती थी कि अल्लाह चाहता अगर नबी या रसूल बनाना तो कुरैश के सरदारों में से किसी के पास फरिश्ता भेजता। ये उनका तकब्बुर था जो उनकी ज़ुबानों से निकलता था। तो कुरैश तकब्बुर की वजह से ईमान नहीं ला रहे थे। अल्लाह ताला ने कुरैश से कनेक्ट करती हुई कहानी दो बागों वाले की सुना दी कि देखो अगर तुम्हारा तकब्बुर तुमको जो है वो ईमान और हिदायत से दूर रखे हुए है तो कहीं ऐसा ना हो कि एक वक्त आए और तुम्हारा तकब्बुर तुमको अल्लाह के अजाब का शिकार कर दे। और जो दूसरी कहानी यहाँ पर आ रही है मूसा और खदर की, ये कहानी जो थी ये यहूद से कनेक्टेड थी और यहूद से कनेक्टेड ये इस तरह से थी कि यहूद जो थे उनको अल्लाह ताला याद कराना चाह रहा है कि याद रखो तुम्हारे रसूल कौन थे, तुम किन के फॉलोअर्स हो। मूसा अलैहिस्सलाम की हर कहानी में बहुत से सबक हैं और मूसा अलैहिस्सलाम का यहाँ जिस फॉर्म में जिक्र किया गया है अनयूजुअल जिक्र है। आप देखें पूरा कुरान मूसा अलैहिस्सलाम के डिस्क्रिप्शन से भरा हुआ है, लेकिन ये सूरह कहफ का जो मुकाम है ये ऐसा डिस्क्रिप्शन है मूसा अलैहिस्सलाम का जो आपको और कहीं कुरान में नहीं मिलता, वरना फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम के डायलॉग्स और कॉन्वर्सेशन रिपीटेडली कुरान में आते हैं। यहूद को खास तौर पर बताना मकसूद ये था कि तुम जिनको फॉलो करने का दावा करते हो, तुम जिनके लिए कहते हो कि ये हमारे नबी थे, उनकी सुन्नत देखो। उनकी सुन्नत ये थी कि उन्होंने इसकी परवाह नहीं की कि उनको इल्म कौन दे रहा है, उनको इल्म की प्यास थी, वो इल्म के पास पहुंचे, उन्होंने अल्लाह की बात मानी और इल्म हासिल करने के लिए अपने आप को सबमिट कर लिया, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम किबर से पाक थे। असल में किबर और तकब्बुर तो अहले किताब के अंदर भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए कि आप जानती हैं कि वो कहते थे वी आर द चोजन वन, हम जो हैं वो अल्लाह के खास चुने हुए अल्लाह के लाडले हैं और हमें जो है वो अल्लाह ताला ने एक गोल्डन लीनेज में रखा है, इसलिए कि ये जो आप जनरेशन चल रही थी, ज़ुर्रियत चल रही थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हज़रत इसहाक से आगे, तमाम अंबिया इन्हीं के अंदर आए, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद लेकर आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया। तो ये अपने आप को एक गोल्डन चेन के साथ कनेक्ट किया करते थे और ये कहते थे कि हम इन कुरैश के बताए हुए रसूल पर ईमान कैसे लेकर आ जाएं जबकि ये हमारी उम्मत में से नहीं है, ये चोजन लोगों में से नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इन अहले किताब को एक वेकअप कॉल दी कि देखो एक नया नबी आ चुका है और अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए इस नबी की तालीम को सुनो, उसको सीखो, उसको समझो ताकि अल्लाह के ऊपर अपने ईमान को रिवाइव कर सको। तो इस तरह से ये कहानी जो है ये यहूद के लिए एग्जाम्पल बनाई गई और रहती दुनिया के लिए, जैसे बाग वाले की कहानी एग्जाम्पल है ऐसे ही मूसा और खदर की कहानी भी हम सब इंसानों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। इस कहानी की जो थीम है वो ये है कि अल्लाह से इंसान को इल्म के फितने से पनाह मांगनी चाहिए। इल्म भी फितना बन जाता है अगर उसको अमल की करेंसी में कन्वर्ट ना किया जाए। खाली इल्म हासिल करते रहना और इल्म का मुरब्बा बनाते रहना या चटनी बनाते रहना वो आपको फ़ायदा नहीं देगा। इल्म को आपको जो है वो रोलिंग में लाना पड़ता है और इल्म रोलिंग में आता है अमल की करेंसी के ज़रिए। तो बता दिया कि वही इल्म जो कि अल्लाह की रहमत होता है, वही इल्म जो ब्लेसिंग होता है, वो कर्स बन जाता है जब उस पर अमल नहीं किया जाता। इल्म जब तक सिर्फ दिमाग में रहेगा, याद रखिए, एज एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, सिर्फ मेंटल स्टिमुलेशन की हद तक जब तक हम इल्म हासिल करेंगे, वो एक कर्स है, वो आपको लॉन्ग टर्म फायदा नहीं दे सकता. जब ये दिल में उतरेगा, जब ये अमल में रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये आपके लिए रहमत का बायस बन जाएगा, कम किफायत कर जाएगा आपके लिए इल्म का हिस्सा, अगर वो आपको बाअमल बना देगा. तो यही चीज यहां समझाने की कोशिश की. और बनी इसराइलियों का मसला यही था. आप सूरह बकरा पढ़िए तो आपको हकीकत पता चलती है कि बनी इसराइल के उलमा के पास इल्म की कमी नहीं थी. तौरात लिखा करते थे, तौरात को समझाया करते थे, लेकिन इनका मसला क्या था, उस तौरात पर अमल नहीं करते थे. सूरतुल जुमा के अंदर इनके स्कॉलर्स की मिसाल को एक पैराबल से बयान किया गया है. अल्लाह ताला ने, ये जो आपको मैंने बताया ना कि इल्म जब सिर्फ दिमाग की हद तक रहता है तो एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज बनती है और एक लानत बन जाती है. सूरह जुमा की आयत नंबर 5 में अल्लाह ने फरमाया, मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत्तौरात, वो लोग जिनको के तौरात की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उनकी मिसाल कैसी है, थुम्मा लम यहमिलुहा, जब उन्होंने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठाया, का मसलिल हिमार, गधे की तरह के हैं, उनकी मिसाल बिल्कुल डंकीज की तरह की है, गधे हैं वो, यहमिलु असफारा, आप गधे के ऊपर मेडिकल की किताबों का बोझ डाल दीजिए तो डॉक्टर गधा बन जाएगा, नहीं. ऐसे ही अगर आप और मैं कहेंगे कि हमारे पास बहुत कुरान का इल्म है, लेकिन वो आपकी और मेरे अमल में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो आप और मैं मोमिन नहीं बन सकते. किसके पास किस मदरसे की डिग्री है, ये नहीं डिफाइन करती कि वो मोमिन है कि नहीं है, उसका अमल डिफाइन करता है कि वो मोमिन है या नहीं है. किसके पास कितनी बड़ी दुनिया की डिग्री है, इससे नहीं पता चलता कि वो सोफिस्टिकेटेड इंसान है. उसकी सोफिस्टिकेशन और उसकी लिटरेसी उस वक्त पता चलेगी जब वो उसको पहचान ले जिसने उसको तौफीक दी है डिग्री हासिल करने की. बेकार है वरना ये कागज के टुकड़े, चाहे सेक्युलर यूनिवर्सिटी के हों या किसी रिलीजियस यूनिवर्सिटी के हों, जब तक ये मेरे और आपके अमल में नहीं ढलेंगे, हमारे लिए सिर्फ कागज का टुकड़ा है. और क्या हकीकत होती है कागज के टुकड़े की, बस एक माचिस की तीली दिखाने की जरूरत होती है, सेकेंड्स में राख हो जाता है. तो अल्लाह ताला ने इन अहले किताब को यहां पर बता दिया कि तुम्हारी जो एरोगेंस है, ये तुमको असल में ह्यूमिलिटी से, आजिज़ी से दूर कर देगी, तुम्हारे दिलों को सील करने का बायस बन जाएगी. अल्लाह ताला से इन्होंने, अल्लाह के रसूल से इन्होंने कहा था कि हमें ज़ुल्कुरनैन की कहानी बताइए. हालांकि हम जानते हैं ज़ुल्कुरनैन कोई बनी इसराइलियों में से नहीं थे, हाँ एक किंग थे. तो अल्लाह ताला ने इनसे कहा कि एक ऐसे किंग की बात क्यों पूछते हो जिसको तुम खुद नहीं जानते हो, उसके बारे में सवाल क्यों नहीं करते जिसको तुम अच्छी तरह जानते हो, यानी मूसा अलैहिस्सलाम. और ज़ुल्कुरनैन की कहानी और इस वाक्य के अंदर कंपैरिजन इसलिए इनके दरमियान में खुतबा नहीं आता, जो स्कॉलर्स कहते हैं इन दो में एक बहुत बड़ा कंपैरिजन है. इंसान समझता है कि उस वो ट्रैवलिंग सिर्फ जो है अपने दुनियावी फायदों के लिए कर सकता है, इंसान ये समझता है कि वो ट्रैवलिंग अपनी किंगडम एक्सपेंड करने के लिए सिर्फ कर सकता है, इसलिए कि ज़ुल्कुरनैन तो इसीलिए ट्रैवलिंग कर रहे थे ना, हाँ अल्लाह के नेक बंदे थे, लेकिन वो अपनी किंगडम एक्सपैंड करने ही के लिए, अल्लाह की बात आगे पहुंचाने के लिए, अपने बैकयार्ड को बड़ा करने के लिए ट्रैवलिंग करते थे. अल्लाह ताला ने मूसा का वाकया यहां पर लाकर बता दिया कि इल्म हासिल करने के लिए भी सफर किया जाता है, इल्म हासिल करने के लिए भी कुर्बानियां दी जाती हैं. एक शॉर्ट टर्म अपने आप को तकलीफ में डाला जाता है ताकि लॉन्ग टर्म इंसान उससे फायदा उठाए. तो ये वाकया जो है ये आपको और मुझे कई एंगल से बहुत से सबक देता है. जैसे इबलीस और आदम की कहानी में पता चला था कि शैतान के किबर की वजह से उसमें आजजी नहीं आई, इसी तरह यहां आपको पता चलेगा कि मूसा और खदर की कहानी के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम की आजजी ने उनके मोमिन होने की शान को और बढ़ा दिया और अल्लाह ताला ने उनकी लेगेसी को आज तक सलामत रखा है. इमाम बुखारी उनके लिए कहते थे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो पहला शख्स थे जिन्होंने इल्म हासिल करने के लिए सफर किया था और उसके बाद से लेकर आज तक तमाम स्कॉलर्स इल्म हासिल करने के लिए सफर करते हैं, उन्हीं की लेगेसी को जिंदा करते हैं, उन्हीं की सुन्नत को पूरा करते हैं. और मूसा अलैहि सलाम वही हैं, वो नबी जिनका कसरत से कुरान में जिक्र आता है, इतना ज्यादा कि किसी और नबी का इतना जिक्र नहीं किया गया जिनका इनका किया गया है. और यही वो वाहिद नबी होंगे जिनके लिए अहादीस में आता है कि जब तमाम अंबिया खड़े होंगे, हिसाब किताब का वक्त शुरू होने वाला होगा, तो अहादीस में आता है कि किसी के पीछे 15 लोग होंगे, किसी के पीछे 20 लोग होंगे, अंबिया के फॉलोअर्स, किसी के पीछे जो है वो तीन होंगे, किसी के पीछे दो होंगे, मेजॉरिटी अक्सरियत जो होगी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे होगी, और सेकंड लास्ट उम्मत फॉलोअर्स की जो होगी वो मूसा अलैहि सलाम की होगी। तो मूसा अलैहि सलाम उलुल अज़म मिनर रसूल आते हैं, अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगंबर आते हैं, और मूसा अलैहि सलाम ही वो थे जिनको अल्लाह ने एक स्पेसिफिक प्रिविलेज दिया था कि अल्लाह मूसा अलैहि सलाम से जिब्राइल अलैहि सलाम के कनेक्शन के बगैर बात करता था। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने मूसा से कलाम किया, और कल्लमा एक दफ़ा नहीं किया, अल्लाह ताला फ्रीक्वेंटली करते थे मूसा अलैहि सलाम से कलाम। कल्लमा, आप में से जिन्होंने अरबिक पढ़ी आपको पता होगा, यह आता है उस वजन पे जिसमें चीज़ जो है वो कंटिन्यूसली होती है, बार बार होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। तो अल्लाह ताला मूसा से कलाम किया करते थे तकलीमन, जैसे कलाम किया जाता है, बस दरमियान में एक हिजाब होता था, दरमियान में एक वेल होता था। तो ये है मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के महबूब, अल्लाह के पसंदीदा, और ये है मूसा अलैहिस्सलाम जिनके लिए कहा जाता है कि अल्लाह ने इनको खुद लिखी हुई टैबलेट्स 10 कमांडमेंट्स की पेश की थी, जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए नहीं पेश करवाई गई थी, अल्लाह ने इनको दी थी। तो अल्लाह ताला ने इनका एक मुकाम रखा था, ये मुकाम था, अगर किसी को तकब्बुर करना था तो इस मुकाम पर तकब्बुर करता, लेकिन ये मुकाम था अंबिया की सुन्नत सामने लानी थी, आजजी सामने लानी थी मोमिन की, कि जब इनसे कहा गया कि किसी अननोन शख्स के पास जाइए और इल्म हासिल कीजिए, तो उन्होंने ये कहा इट्स बीनीथ माय डिग्निटी, मैं कैसे जा सकता हूँ, क्या क्वालिफिकेशन है उनकी, किस मदरसे से पढ़ा है उन्होंने, कौन उस्ताद हैं उनके, क्या स्कूल ऑफ थॉट है उनका। हमारे तो यही सवाल होते हैं ना, हम किसी को कहते हैं चलिए हमारे साथ कुरान की क्लास में, तो वो कहती हैं कौन से वाले हैं वो, पहले तो ये बता दीजिए, ये वाले हैं कि वो वाले हैं कि इधर वाले हैं कि उधर वाले हैं। अगर आप इधर वाले उधर वाले का जवाब देते, फिर वो कहती हैं अच्छा तो उनका स्कूल ऑफ थॉट क्या है, फिर आप कहती हैं उनका स्कूल ऑफ थॉट कुरान और सुन्नत है, हैं ये तो कोई स्कूल ऑफ थॉट ही नहीं होता। हमारे सवाल और हमारे सामने जो सुन्नतें हैं अम्बिया की, हम तो गवारा ही नहीं करते उनकी तरफ नज़र डालना। मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कदर पैगम्बर, इतना आला मुकाम रखने वाले कि जिनसे अल्लाह 1-to-1 बात किया करता था, जैसे कि बात की जाती है जब अल्लाह ने उनको डायरेक्ट किया किसी ऐसे इंसान की तरफ कि आप ऐसे इंसान की तरफ जाएंगे इल्म हासिल करने के लिए कि जो अननोन है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त किसी किस्म की जो है वो अपने अंदर तकब्बुर का इजहार नहीं किया। जिस शख्स के पास अल्लाह ताला ने इनको भेजा, ये पूरी आजजी के साथ उनके पास गए और उनके पास जाके कहा कि आई वॉन्ट टू बी योर फॉलोअर, यानी कहा मैं हूँ मूसा अल्लाह का पैगम्बर, वही वाला एटीट्यूड जो हम अक्सर अपनाते हैं, हेलो हेयर आई एम, ये वाला नहीं एटीट्यूड, बताया ही नहीं। जैसे इमाम अहमद के लिए आता है, इमाम अहमद एक मरतबा एक इलाके में गए और इमाम अहमद के लिए आता है कि एक दिन के अंदर, एक दिन में विद इन अ डे इनका इंतकाल हुआ, विद इन अ डे तकरीबन 10 मिलियन लोग इनके जनाजे में शामिल थे, कोई छोटा नंबर नहीं है। और इमाम अहमद जब किसी इलाके में जाया करते थे तो लोगों को बताया नहीं करते थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे अपने वक्त के, लेकिन मीडिया तो नहीं था ना उस वक्त, ना प्रिंट मीडिया था, ना सोशल मीडिया था, ना आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, तो पता नहीं चलता था लोगों को कि अच्छा इमाम अहमद देखने में कैसे हैं, कैमरे भी नहीं थे किसी के पास कि लोग सेल्फी खींच के ले आते इमाम अहमद के साथ कि मैं गया था इमाम अहमद से मिला था, देखो देखो ये खड़े। इमाम अहमद किसी इलाके में जाते थे तो अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया करते थे, लोगों के पास जाके ऐसे बैठ जाया करते थे कि लोग क्या बात कर रहे हैं क्या बात नहीं कर रहे। एक मरतबा ऐसे इमाम अहमद किसी इलाके में गए हुए थे कि रात हो गई, मुसाफिर थे तो सोने के लिए उनको कोई जगह नहीं, किसी को जानते नहीं थे, तो मस्जिद में चले गए कि मस्जिद में सो जाऊंगा, सुबह उठ के वापस अपना सफर कर लूंगा। जब वो मस्जिद का गार्ड आया, उसने देखा कि एक अननोन शख्स जो इस इलाके में रहता भी नहीं है, नया चेहरा है, यहाँ लेटा हुआ है, उसने कहा हटो यहाँ से, मुझे मस्जिद बंद करनी है। तो इमाम अहमद ने कहा मैं मुसाफिर हूँ, मैं सुबह चला जाऊंगा। उसने कहा नहीं, मुझे हुक्म नहीं है, मैंने मस्जिद बंद करनी है। उन्होंने बाहर निकाल दिया उनको, तो वो वहीं सीढ़ियों पर जाके मस्जिद के बैठ गए। उस गार्ड को गुस्सा आया तो उनके पैर पकड़ के घसीट के उनको सड़क के दरमियान में लेके आ गया। ये इमाम अहमद थे, जब उनके पैरों से घसीट के उनको सड़क पर लाके बैठाया तो उन्होंने ये नहीं कहा हेलो तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, ये अंदाज नहीं होता मोमिनीन का, आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ, आपको पता नहीं है आप किससे बात कर रहे हैं, यही अंदाज आपको यहाँ नजर आ रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम को कोई अपनी इस मुकाम का जो अल्लाह ने उनको दिया हुआ था इसके ऊपर उनको कोई अपना क्रेडिट नजर नहीं आता था, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से दिया हुआ था। तो उन्होंने एक सादे से इंसान की फॉलोइंग को कबूल कर लिया, और जब अल्लाह ताला ने इनको खदर के पास भेजा तो इन्होंने कहा कि मैं आपका फॉलोवर बनना चाहता हूँ। और जिनके पास गए थे वो कोई फैंसी लाइफस्टाइल वाले नहीं थे, एक सादा सी जिंदगी गुजारने वाले इंसान थे। अल्लाह ताला ने सबक दे दिया मक्का वालों को भी اور سبق دے دیا اہل کتاب کو بھی کہ علم حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون علم دے رہا ہے. آپ سنتی ہیں نا, کہا جاتا ہے یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے, کس کی بات کہہ رہا ہے, کس کی طرف بلا رہا ہے, رب کی طرف بلا رہا ہے. تو یہ کہانی آپ کو جو ہے وہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملتی ہے. اس کہانی کو جب آپ آیت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں, آیت نمبر 60 سے, اور اچانک سے جب یہ قرآن میں شروع ہو جاتی ہے, اس لیے کہ ہم تو پورشنز میں پڑھ رہے ہیں نا, سورہ کہف پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3, قرآن میں تو پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 نہیں ہے, تو کنٹینیوشن میں آیتیں آتی ہیں. تو آپ اس کہانی کو ایک انداز میں دیکھتے ہیں کہ کہانی درمیان میں سے شروع ہوتی ہے. بعض اوقات قرآن کی کہانیاں شروع سے آتی ہیں, بعض آتی ہیں اینڈ سے, بعض اللہ تعالیٰ جو ہے اینڈ بتانے کے بعد پھر بگننگ پر جاتے ہیں. اور اس کہانی میں آپ دیکھیں گے بالکل درمیان میں سے یہ کہانی شروع ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ایک خادم کے ساتھ بھیجا اور ان کو کہا کہ سمندر کے دو ملنے کی جگہوں پر چلے جائیں. بالکل درمیان میں سے کہانی شروع ہو رہی ہے, جیسے موویز نہیں شروع ہوتی ایک سین سے اور درمیان میں سے مووی شروع ہو رہی ہوتی ہے. تو مووی بنانے والوں نے وہ سین کی گائیڈنس کیا پتا قرآن سے ہی لی ہو. کبھی آپ وہ لٹریچر کی گریک مائتھولوجی کی کتابیں پڑھیں جو بچے پڑھتے ہیں آج کل, یا آپ وہ موویز دیکھیں جو کہ گریک مائتھولوجی کے اوپر بنائی جاتی ہیں, گریک کلچر پہ بنائی جاتی ہیں, ساری ایسے لگتا ہے. ایون جو ان کے گاڈز بھی وہ بناتے ہیں, جو وہ اپنے شیطان بھی بناتے ہیں, ایسے لگتا ہے وہ احادیث پڑھ کے بناتے ہیں. آپ کبھی نوٹ کیجیے گا, اگر آپ قرآن اور حدیث پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ اس کو آبزرو کریں, بلکہ اپنے بچوں سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے, وہ زیادہ اچھا آپ کو ڈسکرائب کریں گے. آپ تو پڑھیں گے آپ کہیں گے کتنی بورنگ چیزیں میں نہیں پڑھ سکتی, اپنے بچوں سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے. تو بالکل جیسے مارکیٹنگ ٹیکنیکس نہیں ہوتی ہیں آج کل سکھائی جاتی ہیں کہ اگر آپ نے بہت ہی جو ہے وہ سکسیسفل ایڈورٹیزمنٹ بنانا ہے تو آپ نے درمیان میں سے ایک چیز شروع کرنی ہے. بالکل یہی سین آپ کو جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی اس کہانی میں ملتا ہے کہ ایک کہانی جو کہ درمیان سے شروع ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ ہم کہانی شروع کریں, اس کہانی کے تین مین کریکٹرز ہیں, جس میں ایک ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, دوسرے ہیں خضر, اور تیسرے ہیں اس میں یوشع بن نون. خضر, خو, دود اور را, ان کو خضر بھی کہتے ہیں. یہ ان کا نام آپ کو قرآن میں نہیں ملتا ہے. اور یوشع بن نون کو بھی یہاں اس کہانی میں یوشع بن نون کے نام سے مینشن نہیں کیا گیا, فتح ہو کے نام سے, ٹائٹل سے مینشن کیا گیا, خادم کے نام سے. موسیٰ علیہ السلام جن کا پورا نام موسیٰ ابن عمران آتا ہے, اور احادیث میں آپ کو اس واقعے کی پوری ڈیٹیل مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں واقعہ جو ہے وہ سٹیپس میں دیا ہے, بیچ میں سے شروع کیا ہے, لیکن احادیث کے اندر اس واقعے کی شروعات پوری موجود ہیں. بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث آتی ہیں جس میں یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے کہ یہ واقعہ شروع کیسے ہوا تھا. یہ جو کہانی ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں, بعض جیوز یہ کہتے تھے اور آج بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کہانی قرآن میں آتی ہے موسیٰ اور خضر کی, یہ اصل میں موسیٰ ابن عمران نہیں ہیں. اور وہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ ریکارڈ ہسٹری میں موجود نہیں ہے, اور کیونکہ ہسٹری میں موجود نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے جن سے اللہ کلام کیا کرتا تھا. یہ وہ کہتے ہیں یہ موسیٰ ابن عمران نہیں, یہ موسیٰ ابن منشا ہیں. بعض جیوش ٹریڈیشنز کے اندر یہ بات آتی ہے, اور جس کی وجہ سے کچھ تفاسیر میں بھی اس کو مینشن کیا گیا, لیکن ان تفاسیر کی اوتھینٹیسٹی, ان کے پاس کوئی اس کی اوتھینٹیسٹی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ صحیح احادیث سے ٹکرانے والی بات ہے. یہ موسیٰ ابن منشا نہیں تھے. موسیٰ ابن منشا نام آتا ہے یوسف علیہ السلام کے بیٹے کا. یہ موسیٰ ابن منشا کی کہانی نہیں ہے, یہ موسیٰ ابن عمران کی کہانی ہے, اور اسکالرز نے اس کو واضح کیا ہے, اور آپ کو اس کی وضاحت جو ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ بخاری کے اندر احادیث سے مل جاتی ہے. اور اسی اینگل سے یہاں پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صرف قرآن کو تھام کر بعض اوقات چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے, بلکہ 90% چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. قرآن میں آتا ہے کہ جب تم اپنا اللہ کے گھر کا طواف اور سعی کر لو تو اپنے گھروں, اپنے سروں کو مونڈ لو, اپنے سر کو شیو کر لو. وہاں تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مرد شیو کریں گے اور عورتیں شیو نہیں کریں گی. جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کو قرآن سے سمجھا جائے گا, ہاں قرآن کا بعض حصہ قرآن کے بعض حصے کی تفسیر کرتا ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن آپ احادیث کو نگلیکٹ کر کے صرف قرآن کے اوپر رہ کر شریعت پر عمل نہیں کر سکتا. قرآن کے اندر پانچ وقت کی نمازوں کی ترتیب کہاں ہے؟ قرآن میں کہاں بتایا کہ پہلے رکوع, پہلے قیام ہوگا, پھر رکوع ہوگا, پھر سجدہ ہوگا, پھر تم جو ہے دوبارہ کھڑے ہو گئے, پھر تشہد کے لیے بیٹھو گے؟ قرآن میں تو یہ سیکوینس موجود نہیں ہے. कुरान में ये नहीं कहा गया, बस ये कहा गया कि जब सही कर लो तो अपने सरों को शेव कर लो। तो फिर जो लोग कहते हैं कि हम कुरान को कुरान से ही समझेंगे, तो वो उम्रा करने के बाद औरतें अपना सर शेव क्यों नहीं करवातीं? क्या लॉजिक है उनके पास? माने ना फिर इस बात को, हम अपनी मर्जी की बात मानेंगे और अपनी मर्जी की बात नहीं मानेंगे? एक मोमिन, सही अहादीस का इल्म रखने वाला इंसान, सही कुरान को समझने वाला इंसान ये जानता है कि अल्लाह ताला का कलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिक्शनरी के जरिए समझा जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और आपकी सही अहादीस की रोशनी में समझा जाता है। तो ये वाकया भी हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी सुनकर ही बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। जहाँ तक खदर का मामला है, खौ की ज़बर और दौत की ज़ेर के साथ मैं इसको बोल रही हूँ, खदर असल में नाम नहीं है, इट्स अ निक नेम, टाइटल है। खौ दौद र, खदर कहते हैं ग्रीन को, हरे को। गुम्बद खिजरा कहती है ना आप उर्दू में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को, इसलिए कहते हैं उसको कि वो ग्रीन है। इब्न हजर कहते हैं कि खदर एक शख्स का टाइटल था, और ये टाइटल मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने अपनी अपनी राय दी हैं। हाफिज इब्न हजर कहते हैं कि इनका टाइटल ये इसलिए था कि जिस जगह से खदर जहाँ जाते थे, जब ये वहां से वापस पलटते थे, तो पीछे से वो लैंड फर्टाइल हो जाया करता था, ग्रीन हो जाया करता था, यानी वहां पर अल्लाह ताला जो है वहां पर वेजिटेशन उगा दिया करते, तो इसलिए इनका एक टाइटल पड़ गया था खदर। एक और स्कॉलर आते हैं मुजाहिद, मुजाहिद कहते हैं कि जहां पर खदर अल्लाह की इबादत किया करते थे, वो जगह जब यहां से हटते थे तो वो ग्रीन हो जाया करती थी। वल्लाहु आलम, ये मुख्तलिफ ओपिनियंस हैं जो आपको मिलते हैं। खदर की नाम की मुख्तलिफ प्रोनंसिएशंस हैं, खदर भी कहा जाता है, खिदर भी कहा जाता है, और खौ और दौत की पेश के साथ खुदुर भी कहा जाता है। कोई भी आप कह सकती हैं, तीनों वैलिड हैं, तीनों लेजिटिमेट हैं। ये शख्स हैं एक जिनके लिए आता है कि ये मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम में जिंदा थे, मुस्लिम उम्मत के अंदर इनकी पर्सनैलिटी के ऊपर तीन ओपिनियंस मेजरली आपको मिलते हैं, और मैं मेजरली आपके सामने तीनों ओपिनियंस रख रही हूं। एक ओपिनियन जो पहली आपके सामने मैं रखूंगी उससे मैं इत्तफाक नहीं करती, और मेजॉरिटी स्कॉलर्स जो कुरान और सही अहादीस को फॉलो करते हैं वो इसको नहीं मानते। बाकी जो दो ओपिनियंस हैं उसका मामला, क्योंकि दोनों साइड्स पर एविडेंसेस कुरान की मौजूद देते हैं वो सेकंड और थर्ड ओपिनियन में, तो वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। हमारे लिए ये बात इस वक्त ज्यादा अहम नहीं है कि वो बाय पर्सनैलिटी कौन थे और उनके लिए जो है वो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थी। हमारे लिए अहम ये है कि अल्लाह जो बताना चाह रहा है इस वाक्य से हम वो समझ जाएं। लेकिन मैं यहाँ ये तीनों ओपिनियंस आपके सामने सिर्फ इसलिए रखना चाह रही हूँ इसलिए कि हमारे माशरे में इनके बारे में बहुत सी सुनी सुनाई बातें उड़ती रहती हैं। बेहतर है कुरान पढ़ने वाला कुरान की रोशनी में और स्कॉलर्स की बताई हुई तालीमात के मुताबिक, जहाँ पर वो कुरान और सही अहादीस का हवाला और रेफरेंस देते हैं, उसके हवाले से बात को समझ जाए। तो एक ओपिनियन जो आपको मिलती है मुसलमान उम्मत के अंदर खदर के बारे में, एक ग्रुप जो मुसलमानों के अंदर मिस्टिसिज्म वाला ग्रुप है जो कि बहुत ज्यादा मिस्ट्री में इन्वॉल्व रहने वाला है, वो कहते हैं कि खदर वली थे, सेंट थे, सूफी थे। सूफी माइंड रखने वाले लोग जो हैं वो इनको वली डिक्लेयर करने में पूरे के पूरे बज़िद हैं। उनके मुताबिक ये एक बुजुर्ग थे, पीर थे, सूफी थे, सेंट थे। और वो फिर इससे दलील निकालते हैं कि क्योंकि खदर सेंट थे, सूफी थे, पीर थे, तो आप देखें मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ने पीर के पास भेजा था इल्म हासिल करने के लिए। तो आपका कोई पीर नहीं है? अच्छा, इसका मतलब है आप तो काबिल फॉलोइंग हैं ही नहीं। जब इंसान चाहता है अपनी मर्जी की दलाइल निकालना तो ऐसे दलाइल निकाल लेता है। तो इन्होंने कहा कि खदर बुजुर्ग और पीर थे और अल्लाह ताला ने मूसा को इन पीर के पास पढ़ने के लिए भेजा था। और इनका कहना यह है कि खदर जो थे वो हमेशा रहने वाले इंसान हैं, मतलब उनको मौत नहीं आती है, और इनके मुताबिक ये आज भी जिंदा हैं और पीर और औलिया के पास विजिट करते रहते हैं। सही, ये एक ही ओपिनियन चल रही है अभी उस ग्रुप की जो कि सूफी ग्रुप है ज्यादातर। और इनका कहना यह है, जो कुरान की आयत आती है, वा अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, अल्लाह ने कहा कि हमने उसको अपने पास से खास इल्म दिया था। तो ये सारा सूफी सेक्ट जो है, ये जितना भी मिस्टिक ग्रुप है, ये कहता है कि खिदर के पास इल्म लदुन्नी है। लदुन्नी मतलब अल्लाह ने अपने पास से खास इल्म इनको दिया था, यानी डायरेक्ट अल्लाह के पास से इनको एक इल्म की ताकत जो थी वो मिली थी। और ये हकीकत है कि आज भी अगर आप उम्मत के क्रॉस सेक्शन को देखें, ये ओपिनियन खदर के बारे में इतनी स्ट्रांग है कि जब आप लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करते भी हैं तो लोग सुनने को तैयार नहीं होते, इसलिए कि आप फोक लोर्स की तरह सुनते हुए आ रहे हैं ना बचपन से. और हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट कि अच्छा खदर को खदर भी बास लोगों ने इसी ग्रुप ने इसलिए कहा, वो कहते हैं ये है ही ग्रीन कलर के, दिस इज रिडिक्यूलस, कहते हैं ग्रीन कलर के हैं. मैं उस मूवी का नाम नहीं ले रही जिससे मेरे जहन में हमेशा वो कॉन्सेप्ट आता. और यहां तक कहते हैं कि ये ग्रीन टर्बन पहनते हैं और हुवर करते रहते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं. जब भी आप देखें इन्होंने अपने औलिया को कहां पहुंचाया कि कोई हवा में उड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और एग्जाम्पल लाते हैं इस शख्स से, इस हस्ती से, कि ये वो पीर और बुजुर्ग थे जिनके सारे उसके बाद जो है वो पीर और बुजुर्ग निकले. हालांकि आपको इस तरह की डिटेल की कोई श्रेड ऑफ एविडेंस कुरान और सही हदीस में नहीं मिलती किसी तरह से भी, कोई आपको इसका रीजन और इंटेलेक्ट नजर नहीं आता. इनफैक्ट ये चीजें कुरान से कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं. ये कहना कि अल्लाह ने इनको हमेशा जिंदा रखा और आज भी जिंदा हैं, क्या ये कुरान का डिनाइल नहीं है? कुल्लु नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह तो हर नफ्स को मौत देता है. अगर अल्लाह ने जिंदा ही रखना था, ऐसी अबदी जिंदगी देनी ही थी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देते ना, हम तो आज भी उनके दीवाने होते. आज भी मुसलमान उम्मत इतना तो कम से कम जो है वो आपस में फटने का शिकार ना होती अगर अल्लाह ने जिंदगी देनी ही थी तो. तो स्कॉलर्स के मुताबिक ये राय कि वो जिंदा हैं और आज भी जिंदा हैं, ये सही अहदीस से और कुरान से टकराने वाली, कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली बात है. और इसी इन्हीं लोगों के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, और वो ये कॉन्सेप्ट है कि वो कहते हैं कि ये जो औलिया अल्लाह होते हैं इनसे वो कहानी से डिराइव करते हैं, कि क्योंकि मूसा को खदर के पास भेजा गया था, मूसा को नबी होने के बावजूद पीर के पास भेजा गया था, तो ये कहते हैं कि जो वली होते हैं अल्लाह के, जो पीर होते हैं, ये अंबिया से भी ज्यादा एलिवेटेड होते हैं. ये कॉन्सेप्ट आप देखें, शैतान कैसे इंसान को बहकाता है और इंसान को कैसे शैतान कैसे इंसान को हक से दूर करता है. तो इन्होंने कहा कि रसूल का स्टेटस कम होता है वली से, और इन्होंने ये सुन्नत अपनी चला दी कि खदर जो है वो आज भी जिंदा है. जबकि आपको मालूम होगा अगर खदर जिंदा होते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो क्या होना चाहिए था.